नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्बोधन पर एक गहन चर्चा करने जा रहे हैं। ये अखंड ज्योति पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। शीर्षक है, युग परिवर्तन के ऐतिहासिक समय में हमारे दायित्व।
जी,
इस उद्बोधन में पूज्य गुरुदेव ने, आप देखें तो, इतिहास के एक खास मोड़ की बात की है और उसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है इस पर जोर दिया है। ये आज समझना शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है, तो आइए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं।
बिल्कुल, पूज्य गुरुदेव इस समय को युग संधि कहते हैं, मतलब दो युगों का संधि काल, एक बड़ा संक्रमण काल। और वो साफ कहते हैं कि भाई ये कोई साधारण समय नहीं है, ये तो लाखों वर्षों में एक बार आने वाला परिवर्तन का एक अभूतपूर्व अवसर है।
लाखों वर्षों में एक बार, ये तो सुनने में ही बहुत बड़ा लगता है। गुरुदेव ने इसकी गंभीरता समझाने के लिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम से इसकी तुलना की थी, है ना?
हाँ हाँ, बिल्कुल। उनका कहना था कि जैसे वो अवसर जो चूक गए वो बाद में पछताए, वैसे ही ये जो युग संधि का अद्वितीय मौका है, इसको पहचानना, इसका लाभ उठाना बहुत महत्वपूर्ण है, वरना ये भी हाथ से निकल जाएगा।
सही बात है, ये तुलना अपने आप में बहुत कुछ कहती है।
और ये अवसर इतना निर्णायक क्यों है? गुरुदेव के अनुसार मानवता एक दोराहे पर खड़ी है, और दिलचस्प बात यह है कि वो कहते हैं भाई बीच का कोई रास्ता नहीं है, या तो हम आत्मविनाश की ओर बढ़ेंगे,
आत्मविनाश
जैसे कि घातक हथियारों से, या नैतिक पतन से। विज्ञान के घातक हथियार, मनुष्य का नैतिक पतन, और तीसरा उन्होंने कहा अनियंत्रित जनसंख्या विस्फोट, इन सब से, या फिर मनुष्य के अंदर दैवत्व जागेगा और एक स्वर्णिम युग आएगा सतयुग या रामराज्य जैसा।
गुरुदेव ने इन खतरों को बहुत साफ साफ बताया भी था। पहला तो ये विनाशकारी हथियार, दूसरा मनुष्य का नैतिक पतन, वो जो स्वार्थीपन बढ़ रहा है। उन्होंने धर्मशाला वाला उदाहरण भी दिया था, याद है, कि कैसे बिस्तर और अटैची की कीमत इंसान के भरोसे से ज्यादा हो गई, आदमी आदमी से डरने लगा है।
बिल्कुल बिल्कुल, वो उदाहरण आज भी कितना सटीक लगता है। और तीसरा बड़ा खतरा, जैसा मैंने कहा, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, जिससे संसाधनों पर जबरदस्त दबाव पड़ेगा। अब इन गंभीर खतरों के बीच गुरुदेव उन लोगों पर एक विशेष जिम्मेदारी डालते हैं जो इस समय की गंभीरता को समझ सकते हैं,
जिन्हें वो जागृत आत्मा कहते हैं।
हाँ, जागृत आत्मा, या इस युग के देवता समान, क्योंकि उनमें वो दिव्य चेतना जाग रही है। जैसे गुरुदेव कहते हैं, रात में चोरी हो रही हो तो जागे हुए पहरेदार की जिम्मेदारी ज्यादा होती है ना?
सही बात है।
वैसे ही इस युग संधि काल में इन जागृत आत्माओं का दायित्व कहीं ज्यादा है।
तो फिर ये जिम्मेदारी निभाएं कैसे? क्या बस पूजा पाठ कर्म कांड कर लेना काफी है?
गुरुदेव इस बारे में क्या कहते हैं?
नहीं, बिल्कुल नहीं। गुरुदेव यहाँ बहुत स्पष्ट हैं। वो साफ कहते हैं कि सच्ची आध्यात्मिकता केवल बाहरी कर्म कांड या कोई मंत्र तंत्र या चमत्कार दिखाना नहीं है। असल चीज है अपने ईमान को बदलना, अपने चरित्र को, अपने नजरिए को बदलना।
अच्छा, मतलब आंतरिक परिवर्तन।
हाँ, आंतरिक रूपांतरण। उसके बिना बाहरी क्रियाएं तो एक तरह से व्यर्थ है। जैसे उन्होंने कहा कि गुरु के चरणामृत में श्रद्धा न हो तो वो बस पानी है। तो फिर व्यावहारिक रास्ता क्या है? ये आंतरिक बदलाव लाया कैसे जाए?
इसके लिए गुरुदेव ने दो मुख्य बातें बताई हैं। पहला है संयम, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण, खास तौर पर जीभ पर। उन्होंने अस्वाद व्रत की बात की, मतलब कुछ समय के लिए नमक, शक्कर जैसी स्वाद वाली चीजों को कम करना या छोड़ना,
ताकि स्वाद की गुलामी से मुक्त हों।
बिल्कुल। और इसी तरह कामेंद्रिय पर संयम।
ठीक है, यानी व्यक्तिगत अनुशासन। और दूसरा सूत्र क्या था?
दूसरा सूत्र शायद और भी गहरा है, वो है मालिक नहीं माली बने।
ये क्या मतलब है?
ये दृष्टिकोण में पूरा बदलाव लाने की बात है।
मालिक नहीं माली बने, इसका क्या मतलब है?
मतलब ये कि धन, संपत्ति, परिवार, समाज, इन सबको अपनी मिल्कियत न समझें, खुद को इनका संरक्षक समझें, इनका माली, जैसे माली बगीचे की देखभाल करता है वैसे। ये भाव आते ही हमारा व्यवहार, हमारी प्राथमिकताएं सब अपने आप बदल जाएंगी।
वाह।
गुरुदेव कहते हैं कि असली संपत्ति तो सद्गुण है, भौतिक वस्तुएं नहीं।
ये मालिक नहीं माली बने वाला विचार, ये तो सच में जीवन जीने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। ये सिर्फ सेवा भाव नहीं है, ये तो हर चीज के साथ अपने रिश्ते को ही दोबारा परिभाषित करना है।
बिल्कुल सही कहा आपने, और यहीं से जीवन का वो उच्च उद्देश्य भी जुड़ता है। गुरुदेव सवाल भी उठाते हैं, क्या मनुष्य का जन्म केवल पेट भरने और बच्चे पैदा करने के लिए हुआ है, जैसे बाकी जीव करते हैं, या फिर 84 लाख योनियों के बाद, जो ये मानव जीवन मिला है इसका कोई खास आदर्श, कोई ऊंचा सिद्धांत, कोई महान उद्देश्य भी है।
और इस महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो अकेले चलने को नहीं कहते। अंत में उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है।
हाँ, वो अंधे और लंगड़े व्यक्ति वाला है ना, कैसे दोनों ने अपनी अपनी कमजोरी के बावजूद अपनी शक्तियों को मिलाया और नदी पार कर ली।
हाँ, अंधे ने लंगड़े को कंधे पर बिठाया, लंगड़े ने रास्ता बताया
और अंधे ने चलकर मंजिल तय की। ये यही दिखाता है कि हम सब अपनी कमियों के बावजूद अगर अपनी ताकतों को मिला दें तो इस युग परिवर्तन जैसे बड़े काम को भी सफल बना सकते हैं। थोड़ी थोड़ी शक्ति मिलकर ही महाशक्ति बनती है।
तो कुल मिलाकर पूज्य गुरुदेव का इस उद्बोधन में स्पष्ट संदेश यही है कि ये युग परिवर्तन का एक असाधारण समय है और इसमें हमारी भूमिका सिर्फ बाहरी कर्मकांडों तक सीमित नहीं है, बल्कि ज्यादा जरूरी है आत्मनिरीक्षण करना, आंतरिक शुद्धि यानी कायाकल्प करना, संयम अपनाना और सबसे अहम, मालिक की जगह माली बनकर अपने कर्तव्यों को निभाना।
बिल्कुल, और ये चर्चा मुझे लगता है हम सबको एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि इस ऐतिहासिक मोड़ पर एक व्यक्ति के तौर पर अपनी योग्यताओं और अपनी सीमाओं को जानते हुए हम क्या भूमिका निभा सकते हैं, हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी क्या है और उसे निभाने के लिए हम आज से, अभी से क्या कदम उठा सकते हैं।
इसी विचार के साथ आज की एक गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति ही।